کربلا زندہ شہید و زندہ باد،
شہید و زندہ باد، شہید و زندہ باد۔
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام على العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المظلومين الميامين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا صلوات محمد وعلى آله وصحبه
وسلم۔
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سورہ فاتحہ کی۔ شہید مولانا دیدار علی جلوانی صاحب کے روح کی سال ثواب کے لیے، شہید سرفراز بندش کے روح کی سال ثواب کے لیے، اور آج 27 محرم کو پچھلے سال ناظم آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں گھر میں مجلس ہو رہی تھی، اس میں شہادتیں ہوئی تھیں، وہ بھی آج ان کی تاریخ تھی۔ تو ان شہداء کے لیے، دیگر ملت جعفریہ کے شہداء کے لیے، ایک ہمارے معاملے میں سید بچہ تھا جس کو کینسر ہوا تھا، اس کا انتقال ہوا، سید عارف حسین، ان کی روح کے سال ثواب کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ ایاک نستعین، صلوات بھیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیہ مجیدہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے ہماری مخلوق کی ہدایت کرتے ہیں۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے ہم نے امام بنایا ہے، یعنی امام بنانا ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے، تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، ہمارے بنائے ہوئے، جس طرح ہم بے عیب ہیں، ہمارا بنایا ہوا بھی بے عیب ہوتا ہے، تمہارا بنایا ہوا عیبوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تم چونکہ نجاست کا منبع ہو، تمہارے بنائے ہوئے
نجاستوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے بنائے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قریب نجاست آ نہیں سکتی. تمہارے بنائے ہوئے چونکہ تم محتاج ہو تو تمہارے بنائے ہوئے ہمیشہ محتاج ہی ہوتے ہیں. ہم چونکہ بے نیاز ہیں تو ہمارے بنائے ہوئے بے نیاز ہوتے ہیں. پروردگار اس انداز سے کتنی باتیں ہیں جس ایک جملے کے اندر اپنی مخلوق کو, اس کلمہ گو مسلمانوں کو, ان انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ اختیار ہم نے کسی کو نہیں دیا. اگر ہمارے مقابل میں کسی کو امام بناؤ گے تو پھر یاد رکھنا اس کا حشر وہی ہوگا جو آدم کے مقابلے میں شیطان کا ہوا, جو ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کا ہوا, جو موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کا ہوا, اور جو حسین کے مقابلے میں یزید کا ہوا. صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر. کل کی تاریخ کربلا کے ایک جوان کی شہادت کی تاریخ تھی جس کو ہم امام سجاد علیہ السلام کے نام سے پہچانتے ہیں. کربلا کا یہ جوان, کربلا کے واقعے میں 22 برس, کربلا کے واقعے کے بعد 35 برس, کل 57 سال عمر ہے اس امام کی. لیکن اس امام کی اگر آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں کیا دین کی خدمت کی ہے. کبھی کبھار اس امام کی سیرت پڑھ کے عقل و فکر حیران رہ جاتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس مشکل کن مشکل حالات میں اس دین کو محفوظ رکھتے ہوئے ہم تک پہنچایا. دیکھیے کربلا کے واقعے کے بعد اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یزید کی حکومت کمزور نہیں ہوئی تھی, ابھی بھی یزید کی حکومت بڑی طاقت میں تھی. اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ 4 سالہ حکومت ہے یزید کی, پہلے سال فرزند رسول کو شہید کر دیتے ہیں, دوسرے سال مدینہ کو تاراج کر دیتا ہے, اور تیسرے سال خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہے, اور چوتھے سال واصل جہنم ہوا. اگر زندہ رہتا تو پتہ نہیں کیا ظلم کر بیٹھتا. 64 ہجری میں 14 ربیع الاول کو واصل جہنم ہو گیا. یہ 3 سالوں میں 3 بڑے بڑے کام کیے. حالات ناسازگار امام اور امام کے چاہنے والوں کے لیے. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک دوست نے فون کیا کہ جناب ظاہرین آ رہے ہیں کوئٹہ, اور لیکن یہاں کی صوبہ بلوچستان کی حکومت 140 بسوں سے زیادہ کی اجازت نہیں دے رہی, جبکہ بسیں 400-500 سے زیادہ ہوتی ہیں. تو کہا ایک مسئلہ ایک مشکل ہے. تو یاد رکھیے یہ پابندیاں کوئی نئی نہیں ہیں, ان کے آبا اجداد کا بھی یہی کام رہا, ان کی نسلیں بھی یہی کر رہی ہیں. ان کی نسلوں کو جیسے ہی کوئی عہدہ ملتا ہے, مقام و مرتبہ ملتا ہے, وہ اپنے آبا اجداد کی عادتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر حسین تک جانے نہ بھی دیں تو تمہارے رکاوٹ بننے سے حسین ہم سے دور نہیں ہو جائے گا. ہر لمحہ حسین ہمارے دل میں رہتا ہے, ہمارا دل دھڑکتا نہیں ہے. لوگوں کا دل دک دک کرتا ہوگا, ہمارا دل جب دھڑکتا ہے تو حسین 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 کرتا رہتا ہے. صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر. چوتھے امام کے دور میں دیکھیے کہ یعنی اس دین کے لیے قربانی, یعنی دیکھیے امام نے کتنی قربانی پیش کی اور کس انداز سے اپنی زحمت اور تکلیفوں کو نہیں دیکھتے لیکن اس دین کی حفاظت کرتے, اس کو آگے نسلوں تک پہنچاتے محفوظ طریقے سے, نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکے نہ اس دین میں کوئی کمی کر سکے. جیسا ہے ویسے ہی اس یہ دین آگے نسلوں تک قیامت تک پہنچے. आज उन शहदा की बरसी है जो दीन की राह में मारे गए, जो दीन के लिए काम करते रहे, उन्हीं की जिक्र हो रहा है। तो ये अइमे मासूमीन की सीरत पे चलने वाले इमाम अलैहिस्सलाम के लिए हालात देखे कितने मुश्किल। अच्छा, मदीना जो ताराज हुआ तो ऐसी ताराज नहीं हुआ, ताराज भी हुआ तो चूंकि रिहाई मिली मदीना में आने के बाद अली और बतूल की बेटी के खुतबों और इमाम सज्जाद के खुतबों की वजह से मदीना में इनकलाब बरपा हो गया। यजीद के गवर्नर को निकाल के बाहर फेंक दिया। जब इतला यजीद को दी, यजीद ने मुस्लिम बिन अकबा की सरबराही में 10,000 का लश्कर भेजा कि मदीना को ताराज करो। मदीना को ताराज किया गया, लूटा गया। वो मस्जिद जिसमें पैगंबर खुतबे दिया करते थे उस मस्जिद में घोड़े बांधे गए। वो मिंबर जिस पर नबी बैठकर खुतबा दिया करते थे उस पर बंदरों को बिठाया गया। जी 800 या 1,000 औरतें रिवायत में के चौथे इमाम के घर पे आकर अपनी इज्जतें बचाई। जो नहीं आई तारीख ने उनके बारे में क्या लिखा। इस वाक्य को तारीख में वाकई हेरा के नाम से याद किया जाता है। दुख इस बात का होता है कि मदीने की गलियों की बात सब करते हैं, मदीना मदीना मदीने की गलियां, मदीना का शहर, लेकिन मदीने के जो नबी का घराना है उसका जिक्र कोई नहीं करता। उस मदीना के साथ क्या हुआ उसको कोई नहीं बयान करता। मदीना ताराज हुआ लेकिन उसे हुक्म यह था कि बनी हाशिम के मोहल्ले के करीब ना जाना, कहीं दूसरी करबला ना बन जाए। बाकी जो जुल्म कर सकते हो करो। कितने कत्ल हुए मदीना में। और इसके बाद मदीना यजीद की हुकूमत के कंट्रोल में आया, जबरदस्ती अपनी हुकूमत कायम की वहां। लेकिन साथ ही साथ सानिया जहरा के लिए हुक्म यह था कि आप मदीना में नहीं रहेंगी। अली की बेटी को मदीना छोड़ना पड़ा, जहां आज बीबी का रोजा है शाम में। यहां उनके शोहर जनाब अब्दुल्ला की जायदाद थी। यहां आई और ट्यूनिस और मिस्र के रास्ते से होते हुए, पर आज अगर उन ममालिक में शियत नजर आती है तो सानिया जहरा के खुतबों का नतीजा। और वहीं पर आखिरी दम तक रही, वहीं रहलत हुई, वहीं रोजा बना। और आज भी 1400 साल गुजर गए। पिछले साल जब मैं जियारत पे गया तो मुझे बाकायदा बताया, कहा कि आज भी ये पूरा एरिया जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर की मिल्कियत था। आज भी जब कोई अपना मकान अपनी जमीन वहां बेचता है तो बाकायदा कागज में लिखता है कि इस जमीन का असल मालिक अब्दुल्ला बिन जाफर है, लेकिन चूंकि ये टुकड़ा मैंने खरीदा है मैं इसकी कीमत पर फला के हाथ बेचता हूँ, लेकिन असल मालिक जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर। सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। अच्छा, इमाम के खुतबों पर पाबंदी। इमाम खुतबा नहीं दे सकते, इमाम बैअत नहीं ले सकते। हुकूमती अरकान की निगाह इमामत पर, हुकूमती जासूस पहले हुए निगाह इमामत पर, इमाम को कोई काम करने नहीं देते। अब लोगों को भी बताना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम कौन है। देखिए, मौलाए कायनात की इमामत का ऐलान पैगंबर ने 1,24,000 के मजमे में किया। मौलाए कायनात 40 हिजरी में मौला हसन की नियाबत और विलायत का ऐलान करते हैं। अस्हाब अंसार मौजूद हैं सबके सामने मजमे में। मौला हसन 50 हिजरी में शहादत के करीब है। मौला हुसैन की विलायत इमामत का विसायत का ऐलान करते हैं। अस्हाब अंसार मौजूद हैं, लेकिन मौला हुसैन जब चौथे इमाम के विलायत और विसायत इसके हवाले करते हैं इमामत की जिम्मेदारियां, तो ना अस्हाब हैं ना अंसार हैं, चारों तरफ दुश्मनों का नरगा है, उजड़े हुए खेमे। ऐसे में इमामत चौथे इमाम के हवाले की। अगर देखा जाए हर इमाम को इमामत की जिम्मेदारियां जब मिली तो इमाम के पसे पुश्त कुछ जवान मौजूद थे, लेकिन सलाम हो इस करबला के जवान पर कि जिसके पास ना अस्हाब थे ना अंसार थे। ऐसे हालात में इस्लाम के अलम को लेकर उठे, पर आज भी इस्लाम जो बाकी है तो इमाम सज्जाद की कुर्बानियों के नतीजे में। अब लोगों को कैसे पता चले कि मौला हुसैन के बाद इमाम चौथे इमाम है? लिहाजा एक मरतबा मोहम्मद हनफिया मौला सज्जाद के चचा मौला हुसैन के भाई भरे मजमे में चौथे इमाम से कहते हैं, बेटा सज्जाद अब इस खानदान में बुजुर्ग तो मैं ही हूं। कहा बिल्कुल चचा जान, आप इस खानदान के बुजुर्ग हैं, आपका एहतराम हम सब पर लाजिम है। कहा बेटा सज्जाद फिर तो इमामत मेरा हक है ना, इसलिए कि मैं उम्र में ज्यादा हूं। इमाम ने पलट कर कहा, चचा जान इमामत का उम्र से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो नहीं है कि किसी की उम्र ज्यादा है तो उसको इमामत दी जाए, ये तो खुदाई ओहदा है, खुदा जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है नहीं देता। कहा बेटा तुम कहते हो मैं इमाम हूं, जबकि मैं कहता हूं इमामत मेरा हक है,
कैसे
पता कैसे चले? अब देखिए मोहम्मद अनफिया मौलाए कायनात के बेटे हैं, इनकी बदन में मौलाए कायनात का खून गर्दिश कर रहा है, लेकिन मोहम्मद अनफिया ये अंदाज क्यों अपना रहे हैं? ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इमाम बनूं, बल्कि ये मनफी अंदाज अपनाना था ताकि लोगों को इमामत का पता चले। कहा चचा जान कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी हज के अयाम करीब है, हज पे दोनों चलते हैं, हजरत अस्वद के करीब आप भी सलाम कीजिए, मैं भी करता हूँ, जिसके सलाम का जवाब आए वो इमाम है, सलाम का जवाब ना आए वो इमाम नहीं है। अब हुकूमती जासूसों ने जब देखा, बात ऐवान हुकूमत में पहुंचा दी कि चचा और भतीजे तो इमामत पर दस बस्ता है और आपस में दस तो गरेबा है और आपस में खून खराबा होने का भी इम्कान है, हुकूमत भी बहुत खुश। अच्छा इमाम चाहते हैं कि इमामत का जब ऐलान हो लोगों को पता चले तो काफी मजमा हो, लेकिन इमाम कैसे लोगों को बताएं? अब जो हुकूमत को पता चला कि चचा भतीजे इमामत पे लड़ रहे हैं, हुकूमत समझ रही कि चचा भतीजे इमामत पे लड़ेंगे जंग करेंगे, लेकिन चचा भतीजे को पता है हमने क्या करना है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुकूमती ऐवानों में जब बात पहुंची, अब हुकूमत ने भी उस साल लोगों को बाकायदा कहने लगे कि हज पे जाएं और बड़े पैकेजेस के ऐलान हुए, ये पैकेज मिलेगा ये सहूलियत, हज पे जाएं। क्यों? इसलिए हुकूमत चाहती थी सबके सामने चचा भतीजे लड़ें और इमामत खत्म हो जाए, लोग इमामत से मुतनफिर हो जाए, लोगों को पता चले कि ये इमामत वगैरह कुछ नहीं है, और इसके बाद तो अब लोग खलीफा रसूल हमको ही मानेंगे। लिहाजा हुकूमत ने ऐलानात शुरू कर दिए और हज के अय्याम में बहुत बड़ा एक मजमा, और वो रिवायत आपने सुनी होगी कि एक शख्स ने कहा मौला इस दफा हाजी बहुत ज्यादा है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़ी तादाद है, तो इमाम ने बाज ने की दो उंगलियां आगे की, बाज ने कहा चेहरे पे हाथ फेरा, कहा अब देखो। तो कहा मौला ये तो बहुत कम है। कहा जी बहुत कम है। तो इमाम अलैहिस्सलाम इस साल हज पे आते हैं और आने के बाद अब सब जमा है कि अब चचा और भतीजे इमामत पे लड़ेंगे। अब देखिए मनफी अंदाज इतना है लेकिन इमामत को साबित करना है। सब जमा हो गए, मोहम्मद हनफिया कहते हैं बेटा सज्जाद आप आगे आइए सलाम कीजिए ताकि पता चले आप इमाम हैं या मैं। इमाम ने कहा नहीं चचा आप बुजुर्ग हैं पहले आप। इमाम बताना चाहते हैं देखो मैं इमाम हूं। इमाम अपने खानदान में अपने बुजुर्गों से भी अफजल होता है, अपने जवानों से भी अफजल होता है, अपने बच्चों से भी अफजल होता है, लेकिन मैं इमाम होकर अपने बुजुर्ग का एहतराम कर रहा हूं। बताना चाहते हैं इमाम के ए जवान तो कितने ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, कितने ही दौलतमंद क्यों ना हो जाए, कितने ही बड़ा ओहदा तेरे पास क्यों ना हो जाए, कभी ये न समझना मेरा बाबा तो अंगूठा छाप है, मेरा ताया या मेरा दादा या नाना तो अनपढ़ है, ये उसकी तालीम मुझसे कम है, ये उसका ओहदा मुझसे कम है। कभी इस चीज का शिकार ना हो जाना, मैं इसके एहतराम के लिए क्यों ना खड़ा हो जाऊं। कुछ भी हो तू कितना ही आलिम क्यों ना हो जाए, कितना ही दौलतमंद और कितने ऊंचे ओहदे और इख्तियारात वाला क्यों ना हो जाए, तुझ पे वाजिब है अपने बुजुर्ग का एहतराम करे। इमाम अपने अंदाज से बता रहे हैं। एक मरतबा मोहम्मद अनसी आगे बढ़े, सलाम किया, अस्सलाम अलैका या हजर अल अस्वद। मोहम्मद ने कहा सलाम करना था, पत्थर पत्थर बना रहा, कोई जवाब नहीं आया। मोहम्मद अनफिया वापिस आए, लोग समझ रहे हैं कि मोहम्मद अनफिया शर्मिंदगी और खिजालत महसूस करेंगे, लेकिन मोहम्मद अनफिया इसी में खुश है। चौथे इमाम को कहा बेटा सज्जाद अब आप आगे जाइए, कहा मुझे तो जवाब नहीं मिला, अब आप आगे बढ़े। चौथे इमाम बढ़े और एक मरतबा अस्सलाम अलैका या हजर अल अस्वद, एक मरतबा जवाब आया वा अलैका सलाम या इमाम ज़मान, सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। किस प्यारे अंदाज से इमाम की इमामत का ऐलान उतने भरे मजमे में भी हो गया, हुकूमत रुकावट भी नहीं बनी बल्कि हुकूमत मजीद ताउन करने लगी। इसको कहते हैं सियासत, तवज्जो की आपने, ये होती है सियासत, दीन से जुदा नहीं है सियासत। सलाम भेजी मोहम्मद वाल मोहम्मद। दूसरा काम, इमाम करबला का प्रचार कैसे करें इतने मुश्किल हालात में। बनी उमैया की हुकूमत है और इमाम के चाहने वालों के लिए मसाइल मुश्किलात बहुत ज्यादा, ऐसी सूरत में इमाम प्रचार करें तो कैसे। इमाम करबला के प्रचार के लिए गिरिए को जरिया बनाते हैं। करबला के वाक्य के बाद इमाम 35 बरस गिरिया करते रहे, 35 बरस रोते रहे। अब देखिए 22 साल की उम्र में करबला का वाक्य हुआ, 23 साल की उम्र में वापस मदीना आए। सन 62 या 63 हिजरी से इमाम गिरिया करते हैं 95 हिजरी तक। इमाम 25 बरस की उम्र में गिरिया, 30 बरस की उम्र में, 35, 40 बरस की, 50 बरस की उम्र में, 55 बरस की उम्र में, 57 बरस की उम्र में गिरिया। हुज्जाज जब हज करने आते हैं मक्का, हज करके या उमरा करके मदीना जरूर आते हैं। मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों से आने वाले अफराद उमरा करने या हज करने के बाद मदीना जरूर आते हैं, हफ्ता 10 दिन मदीना में ठहरते हैं। अब जो भी हाजी हर साल आता है मदीना में आता है, इमाम बाजार में गिरिया, इमाम मस्जिद में गिरिया, इमाम सहरा में गिरिया, कोई कसाब जानवर जिबा कर रहा है तो इमाम गिरिया कर रहे हैं, कभी ताम पे निगाह पड़ती इमाम गिरिया, पानी पे निगाह पड़ती इमाम गिरिया करते हैं। वो हुज्जाज उमरा करने वाले पूरा साल आते हैं मदीना में, और मदीना में जब देखते हैं कि ये जवान रो रहा है 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 45 और 50 55 बरस का, इन मुख्तलिफ उम्र के हिस्सों में ये रोता है। सोचिए बाजार में गली में कोई बच्चा रोए, कोई इतनी तवज्जो नहीं देता, लेकिन अगर कोई जवान रोए हर एक आएगा, ऐ जवान तू क्यों रो रहा है, जब इमाम के करीब आते हैं जवान तू रोता क्यों है। इमाम कहते हैं अपने बाबा को रो रहा हूं, क्या हुआ बाबा को, मेरे बाबा शहीद कर दिए गए। सोचिए इमाम इस गिरिए को करबला के प्रचार का जरिया बनाते हैं, यजीद के मसालिन बयान करना शुरू कर देते हैं। वाकया इमाम इंतहाई मजलूम है, इमाम ने हम और आपने करबला देखी नहीं है, हम सिर्फ करबला सुनते हैं, हमने अली असगर के हल्क पे तीर नहीं देखा सिर्फ सुना है, हमने अली अकबर के सीने में बच्ची देखी नहीं है सिर्फ सुनते हैं,
हमने शहजादी सकीना के तमाचे लगते हुए देखे नहीं है, सिर्फ सुने हैं। सोचिए हम सिर्फ सुनते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। वो सलाम हो सीमा में सज्जाद पर जिसने ये सारे मनाजिर देखे हैं, अपनी आंखों से देखे। बहुत से कहते हैं ना, खुदा किसी सफेद रीश को जवान बेटे का जनाजा ना दिखा। बहुत मुश्किल है एक सफेद रीश बाप के सामने जवान बेटे का लाशा रखा। लेकिन मैं कहूं, खुदा किसी जवान बेटे को सफेद रीश बाप का जनाजा भी ना दिखाए और बेटा इमाम सज्जाद जैसा जवान हो, बाप हुसैन जैसा सफेद रीश हो और फिर करबला का मैदान हो और बाप के कातिलों को हुस्न कफन मिल रहा हो और बाबा का लाशा बेघोर बेकफन पड़ा हुआ हो, भला ये जवान बर्दाश्त करे तो कैसे बर्दाश्त करे। इसीलिए जब मिनहाल ने कहा, मौला कब तक गिरिया करेंगे, कहा मिनहाल तूने इंसाफ न किया, याकूब का एक यूसुफ जुदा हुआ था, इल्मे नबुवत से जानते थे जिंदा है, इतना गिरिया किया आंखें सफेद हो गई, मिनहाल मेरा एक नहीं 18 यूसुफ करबला में मारे गए, भला मैं गिरिया ना करूं। कहा मौला शहादत तो मीरा से फिर गिरिया कैसा। इमाम ने कहा मिनहाल तूने फिर भी इंसाफ ना किया, अरे शहादत तो हमारी मीरास है, क्या माँ बहनों का बेमकनो चादर बाजारों में दरबारों में आना, क्या ये भी हमारी मीरास है।
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.